हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 13। ये बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का। श्रील प्रभुपाद जी बार बार इस श्लोक को अपने लेक्चर्स में कोट करते थे, तो इस महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत बार लोग ऐसा भ्रांत धारणा कर लेते हैं, ऐसी धारणा कर लेते हैं कि भगवत गीता पे भक्त लोग अंधविश्वास कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। क्या प्रत्यक्ष रूप में हम ये नहीं देखते कि जिस शरीर में हम इस समय हैं उस रूप में हमारा जन्म नहीं हुआ था? हमको स्मृति भी है और अटिस्ट हम फोटो देख सकते हैं कि एक छोटे शरीर में हम थे, फिर थोड़े बड़े हुए, प्रज्ञा आई यानी कि हमारी चेतना आई, और उसके बाद हम थोड़े और बड़े होते हैं और फिर तरुणावस्था में आते हैं और फिर युवावस्था में आते हैं और उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था में बोला जाता है, उसके बाद वृद्धावस्था होती है। इन सारे परिवर्तनों को मैं देख रहा हूँ और इन सभी परिवर्तनों में मुझे कभी नहीं लगता कि मैं परिवर्तित हो गया। ये बहुत सूक्ष्म बात है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि यदि मैं परिवर्तित हो जाता तो मैं परिवर्तन के अनुभव को मैं परिवर्तन के अनुभव का साक्षी नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति किसी घटना का साक्षी है तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने जो उस समय उस घटनाएं वारदात पे मौजूद था। तो बचपन का जो शरीर है उस घटनाएं वारदात में मैं था और वही था जो इस समय वृद्धावस्था में या युवावस्था में हूं, और वो व्यक्ति है आत्मा। आत्मा शरीर के परिवर्तन का साक्षी है, अनुभव कर रही है, लेकिन अज्ञान में हम उस शरीर से अपनी पहचान कर लेते हैं। ये बात होती है। जैसे कभी कभी जो लोग सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं अज्ञान के कारण वो हीरो के दुख और हीरोइन के दुख से अपनी पहचान करने लगते हैं, और हीरोइन को दुख होता है या हीरो को दुख होता है तो वो स्वयं रोने लगते हैं, जबकि इस वो केवल हीरो और हीरोइन के दुख के साक्षी हैं, लेकिन मोह के कारण वो ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसे ही शरीर के सुख और दुख का आत्मा से वास्तविक रूप से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मोह के कारण, माया के प्रभाव के कारण हमारा अभिनिवेश है हमारे शरीर में, इस कारण से शरीर के दुख और सुख को अपना सुख और दुख मानते हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति धीर है, जिसकी आंखें या जिसको ज्ञान में ट्रेंड हैं, वो उस बात से प्रभावित नहीं होता। ये धीर व्यक्ति का लक्षण है। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा का अर्थ है मैं अनुभव करता हूँ और मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव आपका अनुभव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर व्यक्ति को इस जगत में अपना अनुभव खुद ही प्राप्त करना होता है। बाकी लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव अपना है। जैसे इस क्लास को जो व्यक्ति सुन रहा है उसकी चेतना के अनुसार, उसकी चेतना के शुद्धिकरण के अनुसार इसी क्लास के श्रवण का अनुभव हर व्यक्ति को अलग अलग होगा। कोई भौतिकतावादी व्यक्ति बोलेगा ये बिल्कुल बकवास है, और भक्त बोलेगा नहीं ये तो सही बोल रहे हैं, और जो भी जितना भक्ति में आगे बढ़ा रहेगा उसको और रुचि लगेगी। तो लेकिन अनुभव करने वाला आत्मा आत्मा ही है, और सबका अनुभव अपनी चेतना के अनुसार होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मुक्ति के बाद सब एक हो जाएंगे और हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो नष्ट हो जाएगा, या हमारा जो व्यक्तित्व है वो अविनाशी है। यह वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसी कारण से हम लोगों को कभी लगता नहीं कि हम परिवर्तित हो गए, बावजूद उसके कि साइंस के अनुसार 7 साल में हमारा शरीर का एक एक कोशिका पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में उसका शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं एक जगह कि जैसे कोई व्यक्ति एक अच्छे घर में जा रहा हो, खराब घर से या गरीब घर से, तो खुश होता है, तो इस कारण से भीष्म और द्रोण क्योंकि सत्पुरुष थे, महान भक्त थे, तो इस कारण से मृत्यु के बाद कम से कम वो स्वर्ग तो जाएंगे या फिर भगवान के धाम जाएंगे, तो इसलिए शरीर के नाश के लिए अर्जुन का शोक ठीक नहीं था। एक और बात है कि अगर देह अंतरण के वजह से हमें रोना होता तो हमको हमेशा रोना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर का परिवर्तन, देह का अंतरण तो लगातार चलता ही रहता है, तो केवल मृत्यु के समय क्यों रोते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई 3 साल का बच्चा है, वो 15 साल का हो गया, तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, नहीं, उनको तो रोना चाहिए क्योंकि शरीर तो वो चला गया, जो हमारा बचपन का शरीर था वो चला गया, लेकिन तब हम नहीं रोते, केवल मृत्यु के समय रोते हैं। ये हमारा अज्ञान है, जिस प्रकार से हम इस जीवन में भी अपने शरीर को पूरी तरह परिवर्तित होता हुआ देखते हैं और कर लेते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु के समय भी आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा एक दूसरा शरीर धारण करती है अपने कर्मों के अनुसार। शोक अगर होना था तो इस बात का होना चाहिए कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी आत्मा के विकास के लिए हम प्रगति ना करें, इस बात का शोक जरूर होना चाहिए। अभी तो उसे हाँ ये पढ़ लिया हमने, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है, जब हमारे मोबाइल खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम नया मोबाइल ले लेते हैं, जब पुरानी कार हो जाती है तो नई कार ले लेते हैं, तब तो हम दुखी नहीं होते, तो जब नया शरीर प्राप्त करेंगे तो फिर क्यों दुखी होते हैं? तो व्यक्ति कह सकता है, नहीं देखिए इस शरीर में बड़ा सुंदरता व्यवस्था है, इस शरीर में हमें खूब खाने को मिल रहा है, पैसे वाले के घर में पैदा हुए हैं, कोई चिंता नहीं है, अगर शरीर कैसा होगा पता नहीं, इसके लिए दुख कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, माया के प्रभाव से हमें जो भी शरीर प्राप्त हो उसमें हम संतुष्ट होते हैं, चाहे गधा का शरीर मिले, चाहे कुत्ते का मिले, चाहे चिड़िया का मिले। आप कहेंगे क्या प्रमाण है कि वो संतुष्ट हैं? आप किसी को भी मारने का प्रयास कीजिए, अहित करने का प्रयास कीजिए, चाहे वो बंदर शरीर में हो, चाहे चिड़िया के शरीर में हो, सभी अपनी रक्षा करना चाहते हैं, यानी कि अपनी अपनी भौतिक स्थिति में पूरी तरह से सुखी हैं। इवन सूअर के शरीर में भी जीवात्मा सुखी रहता है, नरक के शरीर में भी जीवात्मा सुखी रहता है, दुख भोगने के बावजूद भी माया इतनी प्रबल है, भगवान श्री कृष्ण की माया। ओके, तो हमें हमेशा शरीर मिलते रहेंगे, इसके लिए व्यक्ति को चिंतित नहीं होना चाहिए। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन के लिए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म वस द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही, अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इस जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी वजह से हमारा अगला शरीर का निर्माण हो रहा है। अगर भक्ति करते हैं तो आध्यात्मिक शरीर का निर्माण हो रहा है, अगले जन्म में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा और भगवान का धाम प्राप्त होगा, और अगर भौतिक कार्य कर रहे हैं तो इस जगत में बंधने के बन जाएंगे और अगला शरीर जो अगला देह प्राप्त होगा वो बंधन का कारण होगा, वो बंधन ही होगा इसे कहना चाहिए। तो क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह साधु पुरुष थे, इस कारण से निश्चित रूप से अच्छे कर्म करने के कारण उनको सदगति प्राप्त होगी और भगवान तो स्वयं इस युद्ध स्थल में है ही, तो इसलिए अर्जुन को शोक करने की जरूरत नहीं थी कि तो मर जाएंगे, क्या होगा, युद्ध का परिणाम तो बड़ा गलत हो सकता है, नहीं, वो युद्ध का परिणाम अच्छा ही होने वाला था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है, ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। बहुत बार प्रभुपाद इस बात को समझाते थे कि मृत्यु होती है घर में और व्यक्ति कहता है मेरे पिताजी चले गए, लेकिन ये नहीं पूछता है कि कौन चला गया, या व्यक्ति जो मर रहा होता है वो भी कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी माता का ध्यान रखना, लेकिन उसे पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो खुद को पता नहीं है। तो इस प्रकार से अज्ञान में हम अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। शरीर परिवर्तन होते हुए देखने के बावजूद भी हम मूर्ख बन जाते हैं। जिस व्यक्ति के लिए हम रो रहे हैं उस व्यक्ति को तो हमने जीवन भर देखा ही नहीं है। मान लीजिए पति है या पिता है या पत्नी है, किसी की घर में मृत्यु हुई, आपने जीवन भर देखा ही नहीं और उस व्यक्ति को आप उसके व्यक्ति के जाने के लिए आप रो रहे हैं। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा एक व्यक्ति है केवल बद्धावस्था में और बाद में जाकर वो ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाएगी। ये गलत धारणा है, क्योंकि इससे परम सत्य जो है वो परिवर्तनशील हो जाएंगे। यानी पहले वो एक पिंड थे, उस पिंड में से कुछ बाहर निकाला, परिवर्तन हो गया, फिर पिंड में वो वस्तु वापस आ गई तो फिर वो पूर्ण हो गए। इस प्रकार से नहीं है भगवान कभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आता है। इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं। और आत्मा हमेशा रूप से भगवान की भिन्न अंश है, मतलब बद्धावस्था में मुक्तावस्था में हमेशा वो भगवान से एक संबंध स्थापित कर सकता है अगर वो चाहे तो भगवान या उसका संबंध है, संबंध भूला हुआ इसे कहना चाहिए। तो भिन्न अंश का अर्थ है मैं हमेशा एक व्यक्ति रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद मेरे जो व्यक्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, मेरा जो असली अहंकार है, मेरा जो मेरे होने की जो भावना है वो कभी लोप उसका लोप हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये भावना, ये चेतना अविनाशी चेतना है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह प्रत्येक जीव में से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, तारे तथा चंद्र सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। एक बार कॉलेज में एक बच्चे ने पूछा, देखिए परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही जैसे हैं और शरीर में रह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों शरीर में रहते हैं। तो मैंने कहा, देखिए अगर दो लोग एक ही रूम में हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों एक ही लेवल पे हैं। जैसे मैंने उनको बोला कि हम दोनों लोग इस रूम में बैठे हैं, लेकिन आप स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, हम दोनों एक ही स्तर के तो नहीं हैं। इसी प्रकार से परमात्मा और आत्मा दोनों ही जीवात्मा के हृदय में, हमारे हृदय में, शरीर में, शरीर का जो हृदय का स्थान है वहाँ उनकी स्थिति होती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। आत्मा जो है प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है, और परमात्मा भगवान जो है वो प्रकृति के नियामक हैं, कंट्रोलर हैं, उसके वो प्रोप्राइटर हैं, वो प्रकृति भी उनकी ही है। तो उन दोनों में बहुत अंतर होता है। और एग्जाम्पल और बता रहे हैं कि जैसे आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसमें सूर्य, चंद्र और तारे दिखाई पड़ते हैं, तो जो भगवान है वो जो रिफ्लेक्शन है वो है चंद्रमा का रिफ्लेक्शन या सूर्य का रिफ्लेक्शन, और जो तारों का रिफ्लेक्शन है वो जीवात्माओं का रिफ्लेक्शन है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान सर्वव्यापी हैं तो एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जैसे टीवी में हमारे प्राइम मिनिस्टर का रूप या कोई भी रूप है, मान लीजिए वो लेक्चर दे रहे हैं तो उसको प्रसारित किया जाता है, तो वो रूप जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन जो प्रकट तब होता है जब हम टेलीविजन के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त हैं और उनका रूप भी है। ऐसा नहीं है कि सर्वव्यापी होने से रूप का लोप हो जाता है, रूप जो है वो नष्ट हो जाता है। वो भौतिक रूप ऐसा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप, आध्यात्मिक विग्रह इस प्रकार से नहीं होता। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो तो उनमें उपदेशक और तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थिति में मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कि जो व्यक्ति माया के प्रभाव से प्रभावित है वो कभी भी उपदेश नहीं दे सकता। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु जी आप माया से मुक्त हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम केवल उतना ही बोलते हैं जितना भगवान और पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, जो कि माया से पूरी तरह से मुक्त थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरे कृष्ण।